आज जो सब्जेक्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है अकाउंटेंसी, और हम बात करेंगे अकाउंटिंग टर्म के बारे में। जी हाँ, और जानकारी के लिए हमारे साथ स्टूडियो बनी हुई है हमारी एक्सपर्ट मिस अंशुल खरवंदा जी, जो कि एकेडमिक ऑफिसर हैं एकेडमिक डिपार्टमेंट NIOS से। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है।
थैंक यू सो मच।
तो मैम मैं चाहूंगी प्लीज चर्चा को शुरू कीजिए।
जी बिल्कुल। सो हेलो लर्नर्स, आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो है लेसन 3 अकाउंटिंग टर्म्स। तो जब हम किसी भी सब्जेक्ट की बात करते हैं तो उसकी कुछ इम्पॉर्टेंट बेसिक टर्म्स होती हैं जो सब्जेक्ट पढ़ने के लिए लर्नर्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी होती हैं। तो इसी तरह से अकाउंटेंसी भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, उसमें भी उसी तरह से कुछ अकाउंटिंग टर्म्स होती हैं जिसको आप अगर जानेंगे और उनको जानने के बाद जो सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग है आपकी वो बेटर हो जाएगी। तो आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो इन्हीं अकाउंटिंग टर्म्स को लेकर है। जो पूरा का पूरा हमारा अकाउंटिंग का स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं इसी जो बेसिक टर्म्स जिनकी हम बात करने वाले हैं इन्हीं के ऊपर टिका हुआ है। कुछ टर्म्स जो हैं हम जो फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं जैसे एसेट्स, लायबिलिटीज, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, तो इन सब के बारे में ही आज हम चर्चा करेंगे। तो आज का ये जो सेशन है इसके बाद मुझे लगता है कि आप अकाउंटिंग टर्म्स जो हैं जैसे कि कैपिटल है, ड्राइंग्स है, एसेट्स है, लायबिलिटीज़ है, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट लॉसेस, परचेजेस, सेल्स, इन सब बारे के सब के बारे में जान पाएंगे और बता पाएंगे। तो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी जो है ये जानना सब्जेक्ट क्लियर होने के लिए आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आप सब्जेक्ट को अच्छे से समझ पाएँ। तो सबसे पहले लर्नर्स हम बात करेंगे कैपिटल की। तो कैपिटल क्या है? कैपिटल वो अमाउंट होता है जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है, जो ओनर जो है वो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि ये अमाउंट ओनर इन्वेस्ट किए करते हैं इसलिए इसको ओनर्स इक्विटी भी कहा जाता है। तो ओनर्स इक्विटी क्या है? ये हम कह सकते हैं कि ओनर का हिस्सा है या ओनर का स्टेक है बिजनेस में। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि बिजनेस में जो है कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है एसेट्स में, बिजनेस के एसेट्स में कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ड्रॉइंग्स है। ड्रॉइंग्स क्या होता है? जो भी अमाउंट चाहे वो कैश के फॉर्म में हो या फिर वो गुड्स के फॉर्म में हो, जो भी अमाउंट जो प्रोप्राइटर है अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से विड्रॉ करता है या फिर अपने घरेलू यूज़ के लिए विड्रॉ करता है उस अमाउंट को हम ड्रॉइंग्स कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कुछ बिजनेस है प्रोप्राइटर का, कंप्यूटर्स का बिजनेस है मान लीजिए, और उसने 2 कंप्यूटर्स अपने घर लेके गए अपने बच्चों के लिए कि वो उस पर अपने स्कूल के प्रोजेक्ट्स कर सकें। तो जो गुड्स के फॉर्म में वो यहाँ से बिजनेस से चीज़ें अपने घर लेके गए, तो इसलिए ये जो है इसको ड्रॉइंग्स का नाम दिया जाएगा क्योंकि ये जो प्रोप्राइटर है उन्होंने बिजनेस से विड्रॉ किया है और अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किया है। इसी तरह अगर वो कुछ कैश भी निकालते हैं कुछ चीज़ खरीदने के लिए अपने घर के लिए या अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसे भी ड्रॉइंग्स का नाम दिया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है जिस टर्म पे हम चर्चा करेंगे वो है असेट्स। तो असेट क्या है? एसेट जो है कोई भी एक ऐसी वस्तु हो सकती है जो जिसको या तो इंडिविजुअल ओन करता हो या बिजनेस ओन करता हो, लेकिन सबसे मेन बात यह है कि असेट की वैल्यू जो है हम मनी के टर्म्स में कैलकुलेट कर पाएं, ये ज़रूरी है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसका फ़ायदा बिजनेस आने वाले टाइम में उठाएगी, उस ऐसी किसी भी चीज़ को जिसका बेनिफिट हम फ्यूचर में रीप करेंगे उसको हम एसेट कह सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमारे पास कोई लैंड है, कोई मशीनरी है जिससे हम काम कर रहे हैं और उसका हम फ़ायदा उठा रहे हैं, उसको यूज़ करने से हमारे बिजनेस में या हमारे बिजनेस की इनकम में बढ़ोतरी हो रही है, तो उन चीज़ों को हम असेट का नाम देंगे। जैसे मशीनरी है, फर्नीचर है, स्टॉक है, डेटर्स है, बैंक बैलेंस है या फिर कैश है। तो असेट्स को जो है हम ब्रॉडली 5 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, जैसे कि फिक्स्ड असेट्स है और करंट असेट्स है, टैंजिबल असेट्स है, इनटैंजिबल असेट्स है और वेस्टिंग असेट्स है। सो सबसे पहले हम जान लें कि फिक्स्ड असेट्स क्या होते हैं। फिक्स्ड असेट्स वो होते हैं जो जिनको हम जो बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए खरीदते हैं। जैसे कि हमने अभी अभी चर्चा करी कि लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है या फिर कंप्यूटर हो सकते हैं, फर्नीचर हो सकते हैं, कुछ व्हीकल्स हो सकते हैं या स्टॉक हो सकता है। तो ये सब चीजें जिसको हम बिजनेस में लगाएंगे तो हमें ज्यादा कमाई होगी या हम ज्यादा आय अर्जित कर पाएंगे, इसको हम जो है फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। करंट एसेट्स क्या होते हैं? करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको हम जरूरत पड़ने पर जल्दी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब कि अगर हमें पैसे की जरूरत हो तो हम इन्हें जल्दी से कम टाइम में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक साल में या मे बी एक साल से कम में। जैसे कि हमारे हमारे पास अगर कुछ कैश है तो वो तो ऑलरेडी करंट एसेट है ही, क्योंकि वो कैश इन हैंड है। इसी तरह से अगर बैंक में कुछ पैसा है या फिर बिल्स रिसीवेबल हैं जो हमें कहीं से मिलने हैं, या फिर हमारे डेटर्स हैं जिनसे हमें पैसा लेना है, या फिर जो स्टॉक है जो ऑलरेडी गुड्स के फॉर्म में है, तो ये सब जो है हमारे करंट असेट्स होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है जिसपे हम बात करेंगे वो है टेंजिबल असेट्स। तो टेंजिबल, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, जिसको हम टच कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसे असेट्स जिन्हें हम टच कर सकते हैं या हम देख सकते हैं या फिर उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, उन्हें हम टेंजिबल असेट्स का नाम देते हैं। जैसे कि बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, इस तरह के जो भी असेट्स हैं। लेकिन इसी के साथ कुछ असेट्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम ना देख सकते हैं और ना ही हम उन्हें टच कर सकते हैं और ना ही उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। जैसे कि गुडविल है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट्स हैं, पेटेंट्स हैं। तो ये सब जो है इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं। तो इनके होने से भी, गुडविल होने से भी हमारे बिजनेस में, हमारी आय में बढ़ोतरी होती है, लेकिन उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक इनटेंजिबल एसेट है। सो एक और कैटेगरी जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है वेस्टिंग एसेट्स। तो वेस्टिंग एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको हम नेचुरल रिसोर्सेस से एक्सट्रैक्ट करते हैं और उनको या तो हम रॉ मटेरियल के फॉर्म में कंज्यूम करते हैं या फिर किसी दूसरी तरह से उनको यूज करते हैं, जैसे कि माइंस हैं, ऑयल वेल्स हैं। तो ये सब जो है ये हमारे वेस्टिंग असेट्स होते हैं। सो लर्नर्स, हमने कैपिटल के बारे में जाना, हमने असेट्स के बारे में जाना और हमने ड्रॉइंग्स के बारे में जाना। इसके बाद असेट्स के बारे में जब हम बात कर चुके हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट जिस पे हम बात करेंगे वो है लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होता है? जो भी हमारी असेट्स होते हैं बिजनेस के, वो या तो जो फंड्स प्रोपराइटर्स लाते हैं उनसे फाइनेंस होते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि वो फंड्स आउटसाइडर्स ने हमें दिया हो या फिर फाइनेंस किया हो वो असेट्स को। तो मनी जो या तो इन्वेस्ट किया जाता है प्रोपराइटर से जिससे कि बिजनेस स्टार्ट हो सके, या फिर मनी बोरो किया जाता है बाहर वालों से और उसको बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है, और इस मनी से हम असेट्स को परचेज करते हैं। तो जो प्रोपराइटर हैं या फिर जो आउटसाइडर्स हैं, उनका एक क्लेम होता है इन असेट्स के अगेंस्ट बिजनेस में, उनका एक क्लेम होता है, और ये जो क्लेम होता है प्रोपराइटर का, इसको लाइबिलिटीज का नाम दिया जाता है। तो दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो जो अमाउंट जो है जो फर्म प्रोपराइटर या फिर आउटसाइडर्स को देना है या उनको ओ करती है, उस वो जो अमाउंट है वो जो बिजनेस है उनके लिए लायबिलिटी होता है, बिजनेस यूनिट के लिए एक लायबिलिटी है। तो इसलिए हम कहते हैं कि लायबिलिटीज क्या है? एक ऑब्लिगेशन है या एक डेट है बिजनेस यूनिट के लिए जो उनको फ्यूचर में पे करना है, चाहे वो प्रोपराइटर ने लगाया हो या चाहे वो आउटसाइडर्स ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया हो। तो इसी तरह से हम लायबिलिटीज को दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, वो एक्सटर्नल लायबिलिटीज हो सकती हैं या फिर इंटरनल लायबिलिटीज हो सकती हैं। तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती हैं जो बिजनेस को आउटसाइडर्स को देना है, जब जैसे कि कुछ गुड्स परचेज किए गए, क्रेडिट पे गुड्स परचेज किए गए, या फिर कुछ एक्सपेंसेस किए या लोन लिया, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कुछ क्रेडिटर ऑफ फॉर गुड्स हो सकते हैं, जैसे कि बिल्स पेबल हैं, कुछ सेंड्री क्रेडिटर्स हैं, या फिर कुछ क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं जिनको अभी पे करना है, कुछ आउटस्टैंडिंग सैलरीज हैं, आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं, रेंट है जो ड्यू हो गया है लेकिन पे नहीं किया है, या फिर कुछ क्रेडिटर्स फॉर लोन्स भी हो सकते हैं, जैसे कि बैंक लोन पे करना है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, पार्टनर्स का लोन है, लोन जो दूसरे आउटसाइडर से लिया गया है वो है। और दूसरी तरफ कुछ इंटरनल लायबिलिटीज होती हैं। इंटरनल लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती हैं जो बिजनेस ओ करता है प्रोपराइटर को, मतलब कि वो पैसा है जो प्रोपराइटर ने बिजनेस में लगाया है, लेकिन क्योंकि प्रोपराइटर और बिजनेस को हम अलग अलग एंटिटी मानते हैं, तो इसलिए जो पैसा प्रोपराइटर भी बिजनेस में लगाता है वो एक लायबिलिटी है बिजनेस की प्रोपराइटर के प्रति, और फ्यूचर में चल के उन्हें पे करनी होती है। तो ये जो लायबिलिटी है इसको हम कैपिटल का नाम भी देते हैं, क्योंकि इसीलिए जो ओनर का क्लेम होता है, जो पैसा वो बिजनेस में लगाते हैं, उस पैसे को हम कैपिटल कहते हैं। सो लर्नर्स, जो ओनर का क्लेम है उसे हम एज कैपिटल एक्सप्रेस कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के टर्म्स में भी हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसके अलावा प्रॉफिट्स जो होते हैं बिजनेस के, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं, उसके फॉर्म में भी हम ओनर के क्लेम को एक्सप्रेस किया जाता है। और जो रिजर्व्स हैं उनके फॉर्म में भी हम ओनर के क्लेम को एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो इसके बाद लर्नर्स, जो नेक्स्ट टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे वो है रेवेन्यू। तो जब हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो रेवेन्यू क्या है? हम सभी जानते हैं कि बिजनेस में कैश फ्लो होता है, पैसा जाता है और पैसा आता है। जब हम कोई भी खर्चे करेंगे तो हम उसमें पैसे रुपए को पे करेंगे, और जब हमारी कहीं कहीं से भी आमदनी होगी तो पैसा हमारे पास आएगा। तो जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू का मतलब है इनफ्लो ऑफ मनी। जब भी हमारा हमारे पास पैसा आता है, चाहे वो सेल ऑफ गुड्स हम करें या फिर कुछ हम सर्विसेज प्रोवाइड करें या हम कोई भी चीज ऑफर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, तो उससे हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो जब हम कोई सेल करते हैं गुड्स की, उससे जो हमें अमाउंट रियलाइज होता है, या फिर जो अमाउंट रियलाइज होता है एसेट्स की सेल से, जो हमारे दो चीजें हैं लर्नर्स यहाँ पे समझने की बात है। एक तो कि आप जो अपने जो आपके गुड्स हैं उनकी आप सेल करते हैं, और दूसरा है कि अगर आपके पास में कुछ असेट्स हैं जिनकी हमने बात करी थी कि लैंड है, मशीनरी है, फर्नीचर्स है, फिक्सचर्स है, ये सब चीजें ये आपके असेट्स हैं। और कुछ चीजें होती हैं जो गुड्स हैं, जिनमें गुड्स वो होते हैं जिसमें आपका बिजनेस डील करता है। तो अगर आप उन चीजों को बेच रहे हैं, अपने गुड्स को बेच रहे हैं, तो उसमें से जो पैसा जनरेट होगा उसे हम रेवेन्यू कहेंगे। लेकिन अगर आप किसी एसेट को सेल कर रहे हैं या फिर अगर आप कहीं से लोन ले रहे हैं, तो उससे जो पैसा आ रहा है उसको हम रेवेन्यू नहीं कहेंगे। तो अगर हम ब्रॉडर सेंस में एक बात करें तो रेवेन्यू का मतलब है कि जो ऐसे खर्चे, जो ऐसी आमदनी जो रेगुलर नेचर की होती है, जैसे कि हमें कहीं से कमीशन मिल रहा है, कहीं से डिस्काउंट मिल रहा है, या फिर जो डे टू डे अफेयर्स हमारे बिजनेस के हैं उनसे जो हमें आमदनी होती है, उसे हम रेवेन्यू के टर्म्स में क्लासिफाई करते हैं। तो इसको हम उसी पीरियड में कैलकुलेट करते हैं जिसमें ये अर्न किया गया है या फिर रियलाइज किया गया है। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो गुड सेल ऑफ गुड्स है, या फिर जो हमने रेंट रिसीव किया है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अगर हमने रिसीव किया है, तो रेवेन्यू को हमें इनकम से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। इनकम जो है वो रेवेन्यू और एक्सपेंस के बीच का डिफरेंस होती है। तो जब हम बात कर रहे हैं कि इनकम जो है वो रेवेन्यू और एक्सपेंस के बीच का डिफरेंस होती है, तो अब हमने ये तो जान लिया कि रेवेन्यू क्या है, जो हम अपने डे टू डे खर्चे करते हैं उसे हम रेवेन्यू का नाम देते हैं। तो एक्सपेंस क्या है? तो एक्सपेंस जो है, अगर हम बात करें कि अगर हम एक एग्जाम्पल लें यहाँ पर कि राकेश के पास एक टेक्सटाइल मिल है, वो रॉ मटेरियल परचेज करता है, कॉटन जो है रॉ कॉटन उसको परचेज करता है और उसको क्लॉथ में कन्वर्ट करता है, और इस पर्पस के लिए उसने बहुत सारे एम्प्लॉयज को एंगेज किया हुआ है जिनको वो डेली वेजेस भी पे करता है। उसके पास में एक छोटा सा शोरूम भी है जहाँ वो इस क्लॉथ को बेचता है जो वो खुद ही प्रोड्यूस करता है। उसके पास में 3 सेल्समैन हैं जिनको वो सैलरी भी पे करता है, और अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए वो एडवर्टाइज करता है, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देता है और टेलीविजन में भी इन्वेस्टमेंट करता है, टेलीविजन में भी एडवर्टाइज करता है। तो उसने जो कुछ वो कर सकता है प्रॉफिट को अर्न करने के लिए वो सब कुछ किया है। तो राकेश के लिए जो रॉ कॉटन की कॉस्ट है, जो वेजेस वो पे करता है, जो सैलरीज हैं, जो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट हैं, और जो सारे एक्सपेंसेस उसने किए हैं, जो भी उसने एक्सपेंसेस किए हैं इस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए, वो सब एक्सपेंसेस हैं। तो जो सारे हम कॉस्ट इनकर करते हैं रेवेन्यू को अर्न करने के लिए, उसे हम एक्सपेंस कहते हैं। अब ये वो कॉस्ट भी हो सकती है जिसको हम एसेट या सर्विस कुछ एक्वायर करने के लिए करते हैं, जैसे कि कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है जिसको हमने खर्च किया है रॉ कॉटन को गांव से जो है फैक्ट्री तक लाने के लिए, या फिर कुछ अमाउंट स्पेंड किया है जिससे कि हम गुड्स प्रोड्यूस कर सकें और गुड्स और सर्विसेज सेल कर सकें रेवेन्यू अर्न करने के लिए। तो इसलिए कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल जो है, कैरेज है, वेजेस है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, रेंट जो ऑफिस के लिए पे किया है, ये सभी जो है ये रेवेन्यू की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन एक और शब्द हम सुनते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में भी डिफरेंस होता है। तो एक्सपेंडिचर जो है वो जनरली थोड़ा बड़ा अमाउंट होता है, हम कह सकते हैं, जिसको हम परचेज ऑफ असेट्स के लिए खर्च करते हैं, तो जिससे कि हमारी जो प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी है बिजनेस की वो बढ़ जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमने कुछ फर्नीचर परचेज किया, कुछ मशीन्स परचेज करी, तो एक्सपेंस दूसरे हाथ पे अगर हम देखें तो एक ऐसा अमाउंट है जिससे हम रेवेन्यू अर्न करते हैं। तो अगर हम कुछ एक्सपेंसेस के एग्जांपल्स देखें, तो जैसे अगर हम कुछ पेमेंट करते हैं रेंट के लिए, वेजेस के लिए, सैलरीज के लिए, तो ये हमारे एक्सपेंस हैं। एक्सपेंडिचर को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कहते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कई बार हम कहते हैं, कि अगर हमने रेंट पे किया है या सैलरीज पे किया है, जबकि जो एक्सपेंस है उसको हम हमेशा रेवेन्यू एक्सपेंस ही कहते हैं, क्योंकि उसको हम हमेशा रेवेन्यू अर्न करने के लिए ही पे करते हैं। सो लर्नर्स, अब हम जानेंगे कि प्रॉफिट क्या होता है। तो प्रॉफिट जो है, जो बिजनेस रेवेन्यू होता है और जो बिजनेस एक्सपेंस है, तो जितना भी हमारे पास रेवेन्यू आ रहा है और जितना भी एक्सपेंस हम कर रहे हैं, तो उसको हम आपस में कंपेयर करेंगे, और अगर हमारा रेवेन्यू ज़्यादा है तो हमारा प्रॉफिट होगा, और अगर हमारा एक्सपेंस ज़्यादा है तो हमारा जो है लॉस होगा। उसके बाद लर्नर्स परचेजेस की बात करेंगे कि परचेज क्या होता है। तो परचेज की जब हम बात करते हैं तो ज़्यादातर परचेज का मतलब होता है परचेज ऑफ मर्केंडाइज, लेकिन परचेज का मतलब परचेज ऐसे गुड्स और सर्विसेज का भी हो सकता है जिसमें कि फर्म जो है वो डील करती है। लेकिन जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर हम कार्स का परचेज करें, तो एक ऑटोमोबाइल डीलर के लिए कार का परचेज करना परचेज है, लेकिन किसी और फर्म के लिए ये परचेज नहीं हो सकता है। तो इसी तरह से जब हम सेल्स की बात करते हैं, तो सेल का मतलब है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी, मतलब कि उन गुड्स या फिर उन सर्विसेज की बात यहाँ पे हो रही है जिसमें कि फर्म डील करती है। अगर हम बिजनेस की बात करें, तो एक बिजनेस का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है इसको हम तभी अचीव कर पाते हैं जब हम गुड्स और सर्विसेज को सेल करते हैं, और उस कॉस्ट पे सेल करते हैं जो उसकी कॉस्ट से ऊपर है। जितना हमने उसमें कॉस्ट लगाई है उससे उससे हायर प्राइस पे जब हम सेल करते हैं, तभी हम प्रॉफिट अर्न कर पाते हैं, जो कि बिजनेस का एक मेन ऑब्जेक्टिव भी है। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है जिस पे हम डिस्कस करेंगे वो है स्टॉक। तो स्टॉक जो है एक मैन्युफैक्चरर के केस में अगर हम देखें, तो स्टॉक जो है वो रॉ मटेरियल हो सकता है जो गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए मंगाया गया है, या फिर वो सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के फॉर्म में भी हो सकता है, या सेमी फिनिश्ड गुड्स हो सकते हैं जिससे कि जिसमें कि अभी काम चल रहा है लेकिन अभी वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुए हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट एक और जो कैटेगरी स्टॉक की हो सकती है, वो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के फॉर्म में भी हो सकती है, क्योंकि स्टॉक वो गुड्स भी हो सकते हैं जो पूरी तरह से बन के तैयार हो गए हैं लेकिन अभी भी वो सेल करने के लिए तैयार नहीं है, सेल के लिए अभी भी वो तैयार नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी या जो टर्म है हमारी अकाउंटिंग टर्म, वो है रिसीवेबल्स। तो डेटर्स के साथ साथ कुछ ऐसे और भी लोग हो सकते हैं जिनसे हमें मनी लेना है। ऐसे जो जो लोग हैं जिन जो मनी ओ करते हैं बिजनेस को, उनको हम रिसीवेबल्स कह सकते हैं, जैसे कि हमारे बिल्स रिसीवेबल भी होते हैं। इसी तरह से जो पेएबल्स हैं, मतलब क्रेडिटर्स के साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिसे जिन्हें जो है पैसा पे करना है, तो इस तरह से बिल्स पेएबल भी हमारे हो सकते हैं। उसके अलावा दो और भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको हम हमेशा सुनते हैं, वो हैं डेटर्स और क्रेडिटर्स। तो एक इन दोनों ही टर्म्स की एक थॉरो अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है. जो डेटर है, डेटर वो पर्सन होता है जो जिसको हमें पैसा देना होता है. इसी तरह क्रेडिटर वो सॉरी डेटर वो पर्सन होता है जिससे कि हमें पैसा लेना है. इसी तरह से क्रेडिटर वो पर्सन होता है जिससे कि हमें पैसा देना है. तो इसको एक इजी वे में अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको ज़रूर समझ में आएगा. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है बिजनेस ट्रांजैक्शन. तो बिजनेस ट्रांजैक्शन की हम बात करें तो कि बिजनेस ट्रांजैक्शन अगर क्या है, तो बिजनेस में हम जो भी लेन देन करते हैं वो बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है. तो ये मॉनेटरी नेचर का होता है. बिजनेस ट्रांजैक्शंस की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर ये बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं जिनको हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस का नाम दे देते हैं. ये जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन है, स्टोरेज है, पैकेजिंग है, ये सभी बिजनेस ट्रांजैक्शंस की कैटेगरी में आते हैं. ये मॉनेटरी होता है नेचर में. और अगर कोई क्रेडिट बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं जिसमें गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज तो हुआ है लेकिन मनी रिसीव नहीं हुआ है, तो वो हम फ्यूचर डेट में भी रिसीव कर सकते हैं. और सभी जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं इन्हें हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं. उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है जिसपे हम बात करेंगे वो है बुक कीपिंग. तो बुक कीपिंग क्या है, जब भी हम बुक कीपिंग की बात करते हैं तो साथ में हम अकाउंटिंग की भी बात करते हैं, और ज़्यादातर लोग इसको सिनोनिमसली भी यूज़ करते हैं कि ये सोच कर कि दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन दोनों के मतलब में फ़र्क है. बुक कीपिंग जो है वो मेनली रिकॉर्ड ऑफ होता है फाइनेंशियल डेटा को, जब हम रिकॉर्ड करते हैं एक ऑर्डरली तरीके से तो उसे हम बुक कीपिंग का नाम देते हैं. तो बुक कीपिंग क्या है, एक सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग होती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की, और हम करेक्ट और अप टू डेट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं. तो अकाउंटिंग जो है, प्राइमरीली जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो हम उसमें रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफाइंग करते हैं और समराइज करते हैं डेटा को, और उसको इंटरप्रेट करते हैं जिससे कि जो वो इंटरनल यूजर्स हैं और जो एक्सटर्नल यूजर्स हैं उनको आसानी से समझ में आ जाए. तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग वहां पर शुरू होती है जहां बुक कीपिंग एंड होती है. मतलब एक बार जब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लिया और उनको क्लासिफाई कर लिया, उसके बाद जो नेक्स्ट जो स्टेप होता है वहां पे अकाउंटिंग का होता है, जहां डेटा को समराइज किया जाता है और उसको एनालाइज करके उसको इंटरप्रेट किया जाता है जिससे कि वो एंड यूजर्स को समझ में आ पाए. तो इसीलिए ये भी कहा जाता है कि अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स. तो अकाउंटेंट्स का जो काम होता है वो ज़्यादातर जो बुक कीपर्स का काम होता है उसको रिव्यू करने का होता है, क्योंकि उनका काम वहीं से शुरू होता है. तो अगर हम ये देखें कि बुक कीपिंग की ज़रूरत क्या है, तो फाइनेंशियल पोजिशन जो बिजनेस की होती है उसको असेस करने के लिए बुक कीपिंग बहुत ज़रूरी है. बुक कीपिंग जो है हमें हेल्प करती है कि हम बिजनेस डिसीजंस ले सकें. इनकम टैक्स पर्पसेस के लिए हमारे पास में एक रिकॉर्ड रहता है बुक कीपिंग का. बजट्स बनाने के लिए भी बुक कीपिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है. और उसी के साथ में कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी हैं बुक कीपिंग के, जैसे कि अगर हमें परमानेंट रिकॉर्ड दिखाना है बिजनेस का, उसके लिए बुक कीपिंग इम्पॉर्टेंट है. बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए बुक कीपिंग इम्पॉर्टेंट है. फाइनेंशियल पोजिशन बिजनेस की जानने के लिए भी बुक कीपिंग इम्पॉर्टेंट है. और इन्फॉर्मेशन अगर हमें चाहिए कि टोटल सेल्स कितनी हुई है, टोटल परचेजेस कितनी हुई है, तो ये भी हम बुक कीपिंग से पता लगा सकते हैं. और अगर हमें दूसरे इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्रेडिटर्स और डेटर्स जो बिजनेस के हैं उनसे रिलेटेड, तो उससे भी हमें बुक कीपिंग पता चल जाएगी, बुक कीपिंग से हमें पता चल जाएगा. तो अकाउंटिंग की जब हम बात करते हैं, अकाउंटिंग को हम कहते हैं कि अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है बिजनेस की. तो जैसे कि अकाउंटिंग को बिजनेस की लैंग्वेज क्यों कहा गया है, क्योंकि अकाउंटिंग हमने कहा है कि बिजनेस के जो रिजल्ट्स होते हैं उनको आउटसाइड जो यूजर्स हैं, जो एक्सटर्नल यूजर्स हैं इन्फॉर्मेशन के, उनको बिजनेस के जो प्रॉफिट्स हैं या लॉस हैं उनको वो बताते हैं कि बिजनेस ने कैसा परफॉर्म किया है. तो रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करती है, तो इसीलिए इसको एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन माना गया है. इसीलिए अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी कहा जाता है, क्योंकि अकाउंटिंग जो बिजनेस के रिजल्ट्स हैं उनको आउटसाइड यूजर्स को या फिर इंटरनल यूजर्स को भी कम्युनिकेट करती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है और क्या उन्हें इस ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. उसके अलावा दूसरी भी जो इकोनॉमिक एंटिटीज हैं, या फिर गवर्नमेंट को भी अगर कुछ डिसीजंस लेने हैं या फिर टैक्स असेसमेंट करना है तो उन उस टर्म्स में भी ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि जो बिजनेस की स्टेटमेंट्स हैं वो क्लियर हों और अंडरस्टैंडेबल हों। तो अगर हम अकाउंटिंग की ब्रांचेस की बात करें तो अकाउंटिंग की वैसे तो काफ़ी सारी ब्रांचेस होती हैं, लेकिन यहाँ पर आप तीन ब्रांचेस के बारे में जानेंगे। एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग और फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो जो आप अभी पढ़ेंगे सेकेंडरी कोर्स में और इवन सीनियर सेकेंडरी कोर्स में भी, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है, जिसमें हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, उनको समराइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और रिजल्ट्स को यूजर्स को कम्युनिकेट करते हैं, वो बिजनेस का एक पर्टिकुलर पीरियड में प्रॉफिट एंड लॉस बताती है और एक पर्टिकुलर डेट पे बिजनेस की पोजीशन बताती है, इसे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं। उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग जो है, वो हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जानने में मदद करती है। मतलब अगर हमें किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है तो उसकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, कितना हमें उसमें प्रॉफिट मार्जिन रखना चाहिए, ये सब चीज़ें हम थ्रू कॉस्ट अकाउंटिंग कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो, उससे हम इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं, जैसे कि फंड्स हैं या फिर जो कॉस्ट है या जो प्रॉफिट है, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जनरेट करते हैं मैनेजमेंट के लिए, जिससे कि मैनेजमेंट जो है वो अच्छे डिसीजंस ले सकें जो कि सभी के लिए यूजफुल हो। तो अगर हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग की बात करें तो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स हम रख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमारे लिए ज़रूरी है, फाइनेंशियल पोजीशन जो बिजनेस की होती है उसे जानने के लिए भी हमारे लिए जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़रूरी है, और एक रेशनल डिसीजन मेकिंग के लिए, जैसा कि अभी हमने बात करी मैनेजमेंट के लिए या फिर टैक्स अथॉरिटीज़ के लिए, बैंक के लिए, क्रेडिटर्स के लिए भी ये सब इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी होती है और हमें इसको फेयर वे में जनरेट करना इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम एडवांटेजेस जाने अकाउंटिंग की, तो सबसे पहले तो इतने सारे जो फाइनेंशियल इवेंट्स हैं या ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें हम याद नहीं रख सकते, तो ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट हैं जो हम बनाते हैं, ये एक तरह से एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स की तरह मेंटेन किए जाते हैं, जिससे हमें जब भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो हम उसको रिट्रीव कर पाएँ। तो इसी तरह से जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं, जैसे ओनर्स हैं, लेंडर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, उनको टाइम टू टाइम ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। उसके अलावा ये मैनेजमेंट में और भी कई तरीके से मैनेजमेंट में को हेल्प करती है, एक कंपैरेटिव स्टडी को फैसिलिटेट करती है, क्योंकि अगर किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन जाननी है कि ये बिजनेस कैसा अर्न कर रहा है और दूसरे बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उन्हें किस बिजनेस में पैसा लगाना चाहिए, किस बिजनेस में नहीं लगाना चाहिए, तो इस तरह की अगर उन्हें कंपैरेटिव स्टडी करनी है तो उसके लिए भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो हैं वो बहुत काम आते हैं। उसके बाद एक रिलायबल एविडेंस की तरह ये एक्ट करता है। अगर आपको कोई भी प्रूफ दिखाना हो, एविडेंस दिखाना हो इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, तो कोर्ट ऑफ लॉ में भी हम इन एविडेंसेस को प्रेजेंट कर सकते हैं। उसके अलावा जो है लर्नर्स अकाउंटिंग की, अगर हम लिमिटेशंस की बात करें तो उसकी कुछ लिमिटेशंस भी ये हैं कि सबसे पहले तो जो हमारी पर्सनल जजमेंट्स होते हैं उससे भी कई बार ये इन्फ्लुएंस होती है, कि जैसे अगर कोई पर्टिकुलर एसेट है उसकी अगर हम एस्टिमेटेड लाइफ अज्यूम कर रहे हैं, तो हो सकता है कोई एक अकाउंटेंट उसको अलग 5 साल के लिए भी अज्यूम कर सकता है, कोई दूसरा अकाउंटेंट हो सकता है अकाउंटिंग करे तो वो उसको 7 ईयर्स भी अज्यूम कर सकता है। तो ये जो डिफरेंसेस होते हैं या फिर जो मेथड्स हैं डिफरेंट डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए, हो सकता है कोई रिटन डाउन वैल्यू पे करे और या हो सकता है कोई दूसरा अकाउंटेंट हो तो वो स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड पे करे, तो इसलिए जो डिफरेंट मेथड्स भी डिफरेंट अकाउंटेंट्स यूज़ कर सकते हैं। और एक और जो बड़ा लिमिटेशन है वो ये है कि जो नॉन मॉनिटरी इन्फॉर्मेशन है इसको ये पूरी तरह से इग्नोर करता है, जैसे कुछ और भी क्वालिटीज़ होती हैं पर्सन्स की जो बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, जैसे कि लॉयल्टी है, एफिशिएंसी है, पंक्चुअलिटी है, तो इन सब क्वालिटीज़ को अकाउंटिंग टोटली इग्नोर करता है। सो लर्नर्स, थैंक यू सो मच, आई होप द लेक्चर वॉज यूजफुल, थैंक यू।